हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र मैं सब लोग के लिए बोल रहा हूं। बोलिए हरे कृष्णा। तो श्री वृंदावन धाम ये भगवान ने हमारे लिए प्रकट किया है ताकि हम सब लोग उनके तरफ आकर्षित हो जाएं। लेकिन वृंदावन धाम तो मथुरा में है, मथुरा जिले में है, और बहुत लोगों को एक तो पता नहीं है उसके बारे में, या पता है लेकिन वहाँ पर जा नहीं सकते, बहुत दूर पड़ रहा है। तो हमारे परम गुरुदेव जो हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी ये इच्छा थी कि ये वृंदावन धाम जो है वो जगह जगह उसका प्रतिकृति बनाया जाए, ताकि जो लोग दूर दूर तक वृंदावन धाम में विदेश से या दूर देश से नहीं आ सकते हैं, वो अपने ही घर के पास में कहीं वृंदावन धाम का दर्शन करें तो उनके मन में ये जिज्ञासा, इच्छा, प्रेरणा जागृत हो सकती है। फिर वो उस प्रेरणा के साथ में वहाँ पहुँच सकते हैं जो दूर है। तो वो प्रयास में सबसे पहला प्रयास अमेरिका में किया गया, और वहाँ पर भी एक वृंदावन है, उसको कहते हैं न्यू वृंदावन। एक ऐसा ही प्रयास हंगेरी में भी किया गया है, वहाँ पर भी वृंदावन है। ऐसा एक प्रयास ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया है, वहाँ पर पर्थ में, पर्थ जगह जगह पर कुछ एकड़ जगह में वृंदावन धाम बनाया है। और ये केवल अभी की कल्पना नहीं है, जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब वो गोस्वामी नहीं बने थे तभी वो एक देश के अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री थे। नवाब हुसैन शाह मुसलमान के राज्य में जबरदस्ती उनको प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री बनाया गया था, हिंदुओं को मारने की धमकी देकर कि अगर आप नहीं बनेंगे तो हम हिंदुओं को कष्ट देंगे। तो हिंदुओं के ऊपर करुणा के कारण ये दोनों विद्वान व्यक्ति जबरदस्ती उनके अर्थमंत्री प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन जहाँ पर रह रहे थे वो कि उस जगह का नाम है रामकेली, वो आज भी उपस्थित है जगह, पश्चिम बंगाल में है। और रामकेली में ये दोनों भाइयों ने मिलकर वृंदावन बनाया था अपने घर पे, गोवर्धन पर्वत बनाया था, यमुना नदी बनाई थी, 7 मंदिर बनाए थे, वन बनाए थे, 12 वन, और वही घर था उनका, उस घर के अंदर ही उन्होंने बनाया था, इतना विशाल, बहुत अमीर थे वो। तो उसी प्रकार का प्रयास इस वाड़ा प्रदेश में जो पालघर के पास में है, प्रभुपाद जी के शिष्य हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने यहाँ पर निर्माण किया है। कुछ 25 एकड़ जगह में श्री वृंदावन धाम, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, यमुना, मथुरा, गोकुल, ये सब प्रकट किया है। और भी कुछ चीज़ें प्रकट हो रही हैं धीरे धीरे, जैसे नंदगांव बन रहा है, काम्यवन भी बन रहा है, और इस वक्त हम लोग बरसाना में आए हैं। राधे राधे, बरसाना राधा रानी का घर है। श्री वृंदावन धाम जैसे मैंने बताया आपको, सबसे दक्षिण में मथुरा है, उस दक्षिण में यमुना जी को पार करेंगे तो गोकुल आता है, और गोकुल के आगे 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 तो वृंदावन आएगा, उसके आगे गोवर्धन आएगा, उसके आगे जाएंगे उत्तर की दिशा में तो बरसाना मिलेगा आपको। वो एक पहाड़ के ऊपर है। संक्षेप में उसकी कहानी ऐसी है कि सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने 1,20,000 साल तपस्या किया, केवल कितना 1,20,000 साल तपस्या किया। उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया और पूछा आपको क्या चाहते हो आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके और आपके भक्तों के चरणों की रज मुझे चाहिए मेरे सर पे, आपके चरणों की रज में भक्ति का रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए मुझे आपके राधा रानी के गोपियों के ग्वाल बालों के चरणों की रज चाहिए। तो उन्होंने कहा बरसाने चले जाओ और वहां पर निवास ग्रहण करो। तो ब्रह्मा जी बरसाने आए और यहां पर वो पर्वत बने। उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूं आपको। एक बार सती अनसुया की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आए और उनकी परीक्षा किया उन्होंने, तो उसकी परीक्षा में वो अव्वल दर्जे से पास हो गई, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में परम सती के रूप में उनका प्रसिद्धि हुआ। यहाँ तक कि ब्रह्मा पत्नी, विष्णु पत्नी और शंकर पत्नी भी उसमें क्या कहते हैं उसको, संकोच में आ गई उनकी पतिव्रता को देखकर, पतिव्रत्य को देखकर। तो उनके वात्सल्य से ब्रह्मा विष्णु महेश इतने प्रभावित हो गए थे, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं अभी, लेकिन आपका वात्सल्य अनुभव करने के बाद में प्रत्यक्ष आपका पुत्र बनने की हमारी इच्छा है। तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है आप मेरे पुत्र बन सकते हो। तो फिर ब्रह्मा जी जो है वो चंद्र चंद्र देवता के रूप में अनसुया के पुत्र बने, विष्णु जो है वो दत्तात्रेय के रूप में अनसुया के पुत्र बने, और शंकर भगवान दुर्वासा मुनि के रूप में अनसुया के पुत्र बने। तीनों भगवानों के अंश रूप उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लेकिन जाते जाते अनसुया ने उनको शाप भी दिया कि तुमने हमारे पतिव्रत की परीक्षा ली, संदेह किया, उसके बाद परीक्षा लेने के भी उतर आए आप, तो इसलिए आप सब लोग पत्थर बन जाएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी तीनों पत्थर बन गए। कहाँ पर बन गए? श्री वृंदावन धाम में। बरसाना में ब्रह्मा जी पत्थर बने, गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत के रूप में विष्णु पर्वत बने, पत्थर बने, और नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में शंकर भगवान पत्थर बने। और एक युग में, एक प्राचीन युग में जब प्रभु रामचंद्र प्रकट हुए थे, तो प्रभु रामचंद्र ने तीनों को अपने हाथों से प्रस्थापित किया है, ही हैज इंस्टॉल्ड दिस थ्री माउंटेन्स इन वृंदावन धाम। तो यहाँ पर जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी चार मुख वाले हैं, इसलिए बरसाने का जो पर्वत है वो चार मुख वाला है, चार शिखर वाला है। ये शिखर जो है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं उसको कहते हैं भानुगढ़। भानुगढ़ यानी राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु, उनका महल इस गढ़ पर प्रस्थापित किया गया, उनका घर यहाँ पर बना जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसको भानु महल कहते हैं। और भानु महल भानुगढ़ पर बना हुआ है, यहाँ पर राधा रानी निवास करती है। कृष्ण भगवान की परम प्रिय सखी राधा रानी अपने माता पिता और भाई बहन के साथ यहाँ पर रहती है। उनकी माता पिता का नाम है कीर्तिदा और वृषभानु, उनका बड़े भाई का नाम है श्रीदामा जो कृष्ण भगवान का बड़ा प्रिय सखा है, और छोटी बहन है अनंग मंजरी। ये तीनों भाई बहन और माता पिता यहाँ पर निवास करते हैं। और ये बरसाने का एक शिखर है। दूसरा शिखर है दानगढ़, जहाँ पर भगवान हमेशा प्रेम का दान मांगते के लिए मांगते मांगते वहाँ पर लीला करते हैं। तो एक बार ब्राह्मण ने वहाँ दान मांगा था, क्योंकि ब्राह्मण जी ब्राह्मण को तीन कन्याएं थी, तो भगवान ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो सोचा बहुत, ब्राह्मण फिर भिक्षा मांग ही रहा था, सोचा मेरा तो एक ही धन है राधा रानी, तो राधा रानी को दान कर देते। तो ब्राह्मण जो रो रहा था वो और जोर से रोता है, क्यों? पहले तीन थे अभी चार हो गए। तो भगवान को दया आ गई, फिर भगवान ने अपने सखियों को कहा कि आपके गहने उतारो और राधा रानी को तराजू में रखो, और राधा रानी के वजन के गहने जो हैं वो ब्राह्मण को दान दे दो। तो सभी गोपियों ने अपने अलंकार उतारे हैं, फिर राधा रानी का पलड़ा भारी था, फिर तुलसी पत्र रखा है, फिर तराजू समतल हो गया और वो भगवान ने दान दिया उस गढ़ पर, उसका नाम है दानगढ़। वहाँ पर एक मंदिर बनाया जयपुर के राजा ने, जहाँ पर राधा कुशल बिहारी भगवान को स्थापन किया गया। उस राजा को लगा कि ये मंदिर जो है पुराना हो गया है, तो राधा रानी के लिए नया मंदिर बनाना चाहिए। तो उसने पहाड़ पर कुशल बिहारी यानी दानगढ़ के ऊपर नीचे से पत्थर लाकर उसका कोरीव काम करके बहुत भव्य विशाल मंदिर बनाया। और जिस दिन मंदिर के अंदर यहाँ से राधा रानी का विग्रह वहाँ स्थापन करने का समय आया, तो उस दिन रात को राधा रानी उस राजा के स्वप्न में आई और उन्हें बताया कि मैं मेरे घर से नहीं निकल सकती, ये मेरा चिरंतन शाश्वत स्थान है, आप मुझे वहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अगर उसकी जगह पर आप होते तो क्या कहते? समझो आप राजा होते और आपने मंदिर बनाया राजा रानी के लिए, और अभी कल उसका उद्घाटन होने वाला है, यहाँ से मंदिर वहाँ पर स्थापन होने वाला है, और आपको स्वप्न में राधा रानी कहती है कि मैं नहीं आ सकती, तो आप क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बोला? अगर पहले ही दिन स्वप्न दिया होता तो इतना मंदिर नहीं बनता, इतना मेहनत बच जाती मेरी। लेकिन राजा ने ऐसे नहीं कहा, राजा ने कहा आपके आनंद के लिए मंदिर बनाया, और अगर आपका आनंद यही रहने में है तो मेरा आनंद ही उसी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा मंदिर, मंदिर में दूसरे विग्रह स्थापन किए उन्होंने, राधा कुशल बिहारी, और राधा रानी यहीं पर विराजमान है। यहाँ पर जो फोटो है ये ओरिजिनल राधा रानी के मंदिर का फोटो है। इनका नाम है लाडिली लाल, लाडिली यानी राधा रानी, लाल यानी कृष्ण। बड़े प्रेम से उनको लाडली लाल पुकारते हैं, श्याम सुंदर जी को और राधा रानी को। उसके आगे एक पर्वत का शिखर है, इसका नाम है विलासगढ़। वहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान विलास लीला करते हैं, यानी कि झूला झूलते हैं, रास खेलते हैं, बहुत सारा चटपटी मधुर मधुर लीलाएं करते रहते हैं, विलासगढ़। और लास्ट में एक गढ़ है, लास्ट में एक शिखर है, उसका नाम है मानगढ़। वो बहुत ही अति विशेष शिखर है इन चारों का, क्योंकि वहाँ पर राधा रानी कृष्ण का प्रेम को और बढ़ाने के लिए मान करती है। मान का अर्थ क्या होता है, हम लोग उसको हमारी भाषा में क्रोध कहते हैं, लेकिन वो क्रोध नहीं है, क्रोध स्वार्थ के लिए होता है ना। जब मेरा हित नहीं होता है, मेरा हित पूरा नहीं होता है, स्वार्थ, तो मुझे क्रोध आता है, तो वो स्वार्थ के ऊपर जो गुस्सा है उसको क्रोध कहते हैं। लेकिन जब अपने प्रियतम का प्रेम बढ़ाने के लिए जो करते हैं उसको मान कहते हैं, मान लीला कहते हैं। तो राधा रानी कृष्ण के ऊपर प्रेम को बढ़ाने के लिए कभी कभी रूठ जाती है और रूठ कर वहां बैठ जाती है, फिर उनको मनाया जाता है, तो वो है मानगढ़, और उसका नाम है मान मंदिर, और वहाँ के ठाकुर जी का नाम है राधा मान बिहारी लाल। बहुत सुंदर है ना सब काम, वृंदावन धाम में ऐसे सब मधुर मधुर है सब कुछ, एवरीथिंग इज सो स्वीट। राधा मान बिहारी लाल, मान बिहारी लाल। जब राधा रानी रूठ कर पहाड़ के चोटी पर बैठ जाती है तो कृष्ण भगवान उसको रिझाने के लिए मोर बन जाते हैं, वो मोर बनकर डांस करते हैं, तो वो मोर का डांस देखकर वो अपना मान भूल जाती है और खुद मोरनी बनकर नाच करती है। और बहुत देर तक मोरनी बनकर नाच करने के बाद ध्यान में आता है वो मोर जो बना है वो कृष्ण है। ऐसे चटपटी लीलाएं वहां पर करते हो, भगवान राधा रानी को मनाने के लिए क्या नहीं करते। कभी चरणों में गिर जाते हैं, कभी आंसुओं से पैर धोते हैं, कभी गिड़गिड़ाते हैं, कभी उनके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, कभी विनती करते हैं, रो रो कर पुकारते हैं उनको, सखी बनकर आते हैं, हाँ सखी का भेष धारण करके उनको रिझाने के लिए आते हैं। तो ऐसे राधा रानी कई बार रूठी हुई है उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, और उनको मनाने के लिए राधा कृष्ण भगवान कई बार लीला कर चुके हैं। जैसे एक बार मोर बने तो दूसरी बार आए तो राधा रानी कृष्ण स्वयं साथ में आए और उन्होंने बोला कि हमारे मोर और मोरनियों को नचाएंगे हम। तो कृष्ण ने मुरली बजाई तो कृष्ण के मोर आए, राधा रानी की मुरली आई और सबने मिलकर नृत्य किया वहां पर, ये भी वहां की लीला है। दूसरी बार आए तो हवा से उनके पल्लू उड़ रहे थे आकाश में, आकाश में मंद मंद लहरें आ रही थी, बादल की गड़गड़ाहट हो रही थी, बूंदे भी गिर रही थी, तो उस समय बहुत उनको प्रेरणा हुई। तो कृष्ण भगवान मोर बने, राधा रानी मुरली बनी और बड़े प्रेम से उन्होंने नृत्य किया। कभी कभी कृष्ण मोर बने हैं, कभी कभी मोर जैसा नृत्य किया है बिना मोर बने हुए, ऐसे विविध प्रकार की मोर लीलाएं वहां पर चलती रहती। तो मानगढ़ बहुत विशेष गढ़ है, क्योंकि वहां की भावना और वहां की लीला का रहस्य समझना इतना आसान काम नहीं है। कैसे परम भगवान भी अपने भक्त के सामने एक दीन व्यक्ति बनकर रह सकते हैं, ये इसका प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों को इतना चाहते हैं। वो स्वयं भगवान है लेकिन फिर भी अपनी प्रियतमा राधा रानी के सामने नतमस्तक नम्र होकर अपने जीवन को बिताते हैं। तो हम लोग सब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान भी किसी की पूजा करते हैं। भगवान भी अपने भक्त का दास बनकर रहना चाहते हैं, जो भक्ति करते हैं भगवान का दास बनते हैं। और राधा रानी भक्ति का स्रोत है, भक्ति का उगम है, उगम स्थान है। वो जितनी भी भक्ति हमारे अंदर है ऐसा हम समझते हैं, वो सारा उगम स्थान उनके पास में से है, और वहीं से भक्ति का कर्ण बिंदु बीज प्राप्त होता है, और वो उगम स्थान का दास्यत्व भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे राधा रानी की महिमा है। इसलिए वृंदावन धाम में आप जाएंगे तो कोई भी जय श्री कृष्ण नहीं बोलते वहां पर, राधे राधे ऐसा ही बोलते। क्यों, आपके बेटे का नाम क्या है? हेमांग। समझो अभी आप लोग 150 लोग यात्रा में घूम रहे हो और वहां से किसी ने बोला हेमांग, तो सबसे पहले कौन देखेगा? कौन देखेगा? हेमांग देखेगा कि मां का पिताजी देखेगा? हाँ, सबसे पहले आप देखोगे मेरे बच्चे को कौन पुकार रहा है। उसी तरह से आप कृष्ण को आपका नाम पुकारेंगे शायद आप नहीं सुनेंगे, लेकिन बालक का नाम कोई पुकारेगा तुरंत दिखेंगे आप कौन पुकार रहे हैं। उसी तरह से कृष्ण को पुकारेंगे शायद नहीं सुनेंगे कृष्ण, लेकिन राधे राधे बोलेंगे तुरंत देखेंगे मेरी प्रियतमा को कौन पुकार रहा है। ये सीक्रेट है, सीक्रेट। अगर ऐसा एक मोर था, एक दिन वो नंदगांव गया और भगवान को बहुत पुकारा उसने, कन्हैया गोपाल गोविंद मुरली बहुत करके पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला उसको। फिर वो रो रो के आया, तो किसी ने बोला आप राधा रानी के पास जाओ, वो कुछ आपको आइडिया बताएगी। तो राधा रानी ने बताया क्या हुआ, तो मैं नंदगांव गए, बहुत पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। तो राधा रानी का कोई बात नहीं, दोबारा नंदगांव जाओ, इस बार कृष्ण को मत पुकारो, इस बार राधे राधे पुकारो। तो मोर बड़े आशा से वहां पर गया और राधे राधे पुकारने लगा, तो रा पुकारने के बाद धे पुकारने के पहले ही कृष्ण भगवान भाग के आ गए और मोर को गोद में लिया, बहुत प्रेम किया मोर से, दुलारा उसको, तो उसके भाव में उसके पंख झड़ गए, होता है ना कभी भाव विभोर होकर, तो भगवान ने झड़ा हुआ पंख उठाया और अपने सर पे रखा। ये राधा नाम की महिमा है, कृष्ण को पुकारेंगे शायद वह नहीं सुनेंगे, राधा को पुकारेंगे जरूर सुनेंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा। पहले किसको पुकारते हैं, हरे यानी राधा रानी को पहले पुकारते हैं, ताकि पहले उनको पुकारेंगे तो ये देखेंगे, फिर उनको पुकारेंगे तो सुनेंगे। हरे कृष्ण कहते हैं, कैसे कहते हैं, लक्ष्मी नारायण सीता राम, ऐसे बोलते हैं राम सीता नारायण लक्ष्मी, ऐसे कभी बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, हमेशा राधा कृष्ण हरे कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण ऐसे बोलते हैं, ताकि शक्ति को पहले पुकारेंगे तो उसके वजह से शक्तिमान भी आपकी सुनेगा। तो शक्तिमान को अगर सुनाना है कुछ, को पुकारना है तो पहले शक्ति को पुकारो, यही इसका रहस्य है। कुछ काम कराना है बड़े आदमी से तो उनकी पत्नी से कांटेक्ट करो, फिर वो पनीर की सब्जी खिलाते खिलाते बोलेंगे अजी सुनो जी मेरा एक पहचान वाला है उसका ये काम करना है, करोगे ना, हाँ थोड़ा पनीर डालो फिर कर दूंगा, तो डालेंगे और काम हो जाएगा आपका। और अधिकारियों से बात करेंगे यहाँ से कांटेक्ट करेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन किचन में से अगर आदेश आएगा ना तुरंत काम हो जाएगा, होता है ना ऐसे, वशीलेबाजी होती है कि नहीं ऐसे, तो उधर वो दुनिया में भी चलती है वशीलेबाजी, वहाँ पर भी ट्रांसेंडेंटल सिफारिश चलती रहती है। तो यहाँ का रहस्य एक ही है, यहाँ पर राधा रानी को पुकार कर कृष्ण के दिल को जीत लेते हैं। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।